हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका को लेकर काली पहाड़ी की ओर जाने लगा था। मल्लिका पहली बार काली पहाड़ी की ओर जा रही थी। उसे वो सफ़र काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार लग रहा था। कभी वो आसपास के घने पेड़ पौधे देख रही थी, तो कभी कुछ और देख रही थी और कुछ न कुछ छूने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर काली शक्तियों का मालिक अमित चिड़चिड़ा हो चुका था। तुम्हें इस तरह का बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मल्लिका से कहने लगा था। आखिरकार तुम इस तरह से बच्चों वाली हरकतें कर भी क्या सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक बूढ़ी औरत हो, यानी कि तुम काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हो, तो इसीलिए तुम छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद कर दो। जैसे ही मल्लिका ने अमित के मुंह से इस तरह की बातें सुनी, वो काफ़ी उदास हो गई थी और फिर चुपचाप आगे बढ़ने लगी थी। जैसे ही मल्लिका और अमित काली पहाड़ी की ओर जाते हुए एक बड़े विशाल घने पेड़ के नीचे रुके, तो उन्हें एहसास होने लगा था कि वहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वे रुके थे, ठीक उसी पेड़ के ऊपर प्रेमा अपने जादुई घर में रहा करती थी, जो तारा परी ने उसे दिया था। प्रेमा एक खूबसूरत बच्चे की माँ बन चुकी थी। वो बच्चा किसी और का नहीं, बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित का था, और अमित का दूसरा बच्चा मल्लिका के पास था, जो उसने उसी की माँ को, यानी उस बूढ़ी औरत को जंगल में पालने के लिए दे दिया था। कुल मिलाकर काली शक्तियों के मालिक अमित के दो बच्चे हो चुके थे, लेकिन अमित को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और काली शक्तियों के मालिक अमित के दोनों बच्चे आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तहलका मचाने वाले थे, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही प्रेमा ने अपने बच्चे समेत काली शक्तियों के मालिक अमित को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, तो वो हैरानी और गुस्से से बुरा हाल हो गई थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अभी तक उसके बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई शक्तियाँ नहीं हैं। अभी तक वो सिर्फ एक मामूली इंसान का बेटा है। लेकिन अगर काली शक्तियों के मालिक अमित की कुछ बूंदें उस बच्चे के ऊपर गिर जाएं, तो उस बच्चे के अंदर काली शक्तियों के मालिक अमित की कुछ शक्तियाँ आ जाएंगी, और प्रेमा तो यही चाहती थी। प्रेमा ने उस बच्चे को इसीलिए जन्म दिया था ताकि वो बड़ा होकर अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला काली शक्तियों के मालिक अमित से ले सके। तब प्रेमा कुछ सोचने लगी थी। उसने सोच लिया था कि उसे आज कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे काली शक्तियों के मालिक की शक्तियों उसके बच्चे के अंदर आ जाएं, क्योंकि प्रेमा अपनी आँखों से काली शक्तियों के मालिक अमित का शक्तिशाली रूप देख चुकी थी, और ये भी देख चुकी थी कि जिस रात काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसके साथ बदसलूकी की थी, उस वक्त उसने किस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। ये प्रेमा अपनी आँखों से देख चुकी थी। वो अमित के बच्चे के हाथों से अमित का ही सर्वनाश करवाना चाहती थी, इसीलिए उसने कठिनाई का जीवन जीते हुए उसे जन्म दिया था। लेकिन तारा परी ने उसके कठिनाई भरे जीवन को जादुई खाने का बर्तन और एक जादुई घर देकर आसान कर दिया था। प्रेमा सोचने लगी थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे काली शक्तियों का मालिक अमित अपने खून की कुछ बूंदें उस बच्चे पर गिराए। इसीलिए प्रेमा ने जादुई घर के अंदर से ही काली शक्तियों के मालिक अमित और मल्लिका के ठीक पीछे अपने बच्चे को जादुई घर से बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस वक्त उसके अंदर काली शक्तियों के मालिक की कुछ शक्तियाँ डलवाना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद क्या भरोसा कि काली शक्तियों का मालिक वहाँ आए या ना आए। जैसे ही अमित और मल्लिका ने अपने पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा ही खूबसूरत गोल मटोल सफ़ेद चिट्टा बच्चा उनके ठीक पीछे बैठा हुआ रो रहा था। मल्लिका ने जल्दी से अपने आसपास अच्छी तरह से देख लिया था, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से ये बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? अमित ने मल्लिका को देखते हुए कहा, कहीं ये किसी का शैतानी जाल तो नहीं है? क्योंकि इस वक्त वे काली पहाड़ी वाले जंगल में थे, और वहाँ पर कितनी सारी शैतानी आत्माओं का वास रहा करता था। इस तरह से अचानक बच्चे के वहाँ आने पर उन्हें यही लग रहा था कि कहीं कोई काली शक्ति या सफ़ेद जिन तो वहाँ नहीं आ गए हैं उस बच्चे के रूप में। लेकिन मल्लिका को वो बच्चा किसी भी तरह से कोई काली शक्ति या सफ़ेद जिन का रूप नहीं लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया था। जैसे ही मल्लिका ने बच्चे को गोद में लिया, अमित उस पर चिल्लाने लगा था, ये क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये काला जंगल है? यहाँ पर किसी भी इस तरह के बच्चे का होना खतरे से खाली नहीं है, समझी तुम? इसे छोड़ो, वहीं पर छोड़ो। लेकिन मल्लिका ने अमित से कहा था, लेकिन मालिक, ये बच्चा तो छोटा है, भला इससे हमें किस तरह का खतरा हो सकता है? तब अमित ने जबरदस्ती मल्लिका के हाथ से वो बच्चा ले लिया था, और उस जबरदस्ती में मल्लिका के बड़े बड़े नाखून अमित के हाथ पर गड़ गए थे और उनमें से खून निकलने लगा था, और वो खून सीधा उस बच्चे की छाती और माथे पर गिर गया था। जैसे ही उस बच्चे के ऊपर अमित का खून पड़ा, अचानक से उस बच्चे के जिस्म का रंग बदलने लगा था। प्रेमा की चाल कामयाब हो गई थी। प्रेमा बड़े ध्यान से अमित और मल्लिका की लड़ाई को देख रही थी, साथ साथ अपने बच्चे के बदलते हुए रंग को भी देख रही थी, और वो समझ चुकी थी कि उसके बच्चे के अंदर काली शक्तियों के मालिक अमित की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तब प्रेमा मन ही मन खुश होने लगी थी। जैसे ही अमित ने उस बच्चे का रंग बदलता हुआ देखा, उसने जल्दी से उसे पेड़ के पास फेंक दिया था और मल्लिका से बोला था, जल्दी चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी गुरु के पास पहुँचने तक मैं किसी भी झंझट में या किसी भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तभी मल्लिका ने काली शक्तियों के मालिक अमित से कहा था, लेकिन मालिक, ये इस तरह से इसका रंग कैसे बदल सकता है? मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें रुककर यहाँ पर चेक करना चाहिए। तब काली शक्तियों का मालिक अमित गुस्से से मल्लिका की ओर देखते हुए बोला था, एक तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हें ना समझ बेवकूफ को अपने साथ ले आया। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक काला जंगल है और यहाँ पर हर असुर अपनी शक्तियाँ बढ़ाने पर लगा रहता है, और तुम हो कि अपनी बेवकूफ भरी बातें यहाँ कर रही हो? जैसे ही काली शक्ति के मालिक अमित ने मल्लिका पर गुस्सा किया, मल्लिका मन ही मन खींच रही थी और उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसके बाद अमित को कुछ भी कह सके। और वहीं अमित मल्लिका को डांटता हुआ उसका हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से भाग गया था, और प्रेमा मुस्कुराती हुई जादुई घर से बाहर निकल आई थी, और उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर वापस जादुई घर में चली गई थी, और बड़े नफ़रत से जिस दिशा में अमित गया था उस दिशा में देखते हुए बोली थी, काली शक्तियों के मालिक अमित, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर, बहुत घमंड है ना अपनी शक्तियों पर। अब देखो तुम्हारा ये घमंड मैं कब और किस तरह तोड़ती हूँ। इंतज़ार करो मेरे बच्चे के बड़े होने का। ओह माफ़ करना, मेरे नहीं, तुम्हारे बच्चे के बड़े होने का। ऐसा कहकर प्रेमा जोरों से हंसने लगी थी और जल्दी ही बच्चे को लेकर जादुई घर में अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी ओर तारा परी और करिश्मा जी जल्दी ही उस गांव को पार कर चुके थे। गांव पार करने के बाद अचानक उन्हें एक जर्जर हालत में लोहे का दरवाज़ा दिखाई देने लगा था।
वो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था और उसके आगे काफ़ी बड़ा मैदान था। ऐसा लग रहा था मानो कभी जब वो मंदिर ठीक होगा तो वहाँ पूजा करने वाले श्रद्धालु इस बड़े से मैदान में बैठा करते होंगे। उस मैदान के ठीक एक कोने पर मंदिर के आकार की मूर्ति दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी हालत काफ़ी बुरी थी, लेकिन तारा और करिश्मा जी को समझने में देर नहीं लगी थी कि यही वो मंदिर है। शिव मंदिर को देखकर करिश्मा जी की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि ये शिव मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें ख्याल आया था। तभी तारा ने करिश्मा जी का हाथ पकड़ लिया था और कहने लगी थी, मॉम, ज़रूर यही वो जगह है। तब करिश्मा जी ने भी तारा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था, हाँ बेटा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि ज़रूर काली शक्तियों के गुरु ने अमन के पिताजी को इस मंदिर के आसपास कहीं कैद कर रखा है। उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं, उनकी आँखें झिलमिला रही थीं, और तभी करिश्मा जी ने तारा परी को ज़ोरों से गले लगा लिया था और बोली थी, मेरी बच्ची, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमन के पिताजी हमें ज़रूर यहीं मिल जाएंगे। ऐसा कहकर जल्दी ही वे दोनों बड़े से सरोवर को देखते हुए आगे बढ़ने लगी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सरोवर को पार करने के लिए पहला कदम उस बड़े से सरोवर ने रखा, ठीक उसी वक्त वो सरोवर एकदम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू से भर गया था। ये देखकर तारा और करिश्मा जी की चीख निकल गई थी। दूर से तो वो सरोवर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक उसके आसपास किसी भी तरह की कोई घास तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम उस सरोवर पर रखा, उस सरोवर में कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू करोड़ों लाखों की तादाद में मौजूद थे, जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान तो जान ही छोड़ देता। लेकिन तारा और करिश्मा जी सावधानी के साथ बड़े ध्यान से उन सभी कीड़े मकोड़ों को चलते हुए देख रही थीं। और एक और बात उन्होंने नोट की थी, जितने भी वे कीड़े मकोड़े थे सारे एकदम काले काले थे, एक भी कीड़ा मकोड़ा अलग रंग का नहीं था, सारे एकदम भयानक काले रंग के थे। तो करिश्मा जी को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि ये जितनी भी कीड़े मकोड़े हैं ये सभी काली शक्तियों के गुरु के द्वारा पैदा किए गए हैं। काली शक्तियों के गुरु ने करिश्मा और तारा को वहां तक न पहुंचने के लिए काफी मुश्किलें उनके रास्ते में पैदा की थीं। पहले तो बड़ा सा दानव वहां भेज दिया था, उसके बाद काला कुत्ता जो हाथी के जितने बराबर का था, और अब जो वे मंजिल के काफी करीब पहुंच चुकी थीं तो उसने ढेर सारे काले काले कीड़े मकोड़े वहां पैदा कर दिए थे। उन्हें देखकर तारा परी और करिश्मा जी काफी हैरान थीं। करिश्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, वहीं तारा परी भी करिश्मा जी की ओर ही देख रही थी। उन कीड़ों मकोड़ों को देखकर करिश्मा ने तारा से कहा था, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कीड़े मकोड़े काली शक्तियों के गुरु के द्वारा बनाए गए हैं, और क्योंकि हम शिव मंदिर के काफी करीब हैं और काले जंगल को पार कर चुके हैं तो यहाँ आकर मेरी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, मैं जल्दी ही यहाँ से निकलने का रास्ता बना लूंगी, तुम बिल्कुल मत डरना। करिश्मा जी तारा को सांत्वना दे रही थी। कहीं ना कहीं करिश्मा जी को ये लग रहा था कि इतने सारे कीड़े मकोड़े देखकर तारा परी डर रही होगी, क्योंकि आखिर वो तो एक मामूली इंसान ही है, भले ही उसके अंदर जिन का वंशज हो लेकिन इंसानी फितरत भी तो उसके अंदर है, इसलिए उसका डरना स्वाभाविक है। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा परी मुस्कराने लगी थी। तारा परी अगर चाहती तो एक झटके में करिश्मा जी को उन कीड़े मकोड़ों से बचाकर सीधा शिव मंदिर के सामने पहुंचा देती, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो करिश्मा जी को उसकी सच्चाई जानने में एक पल नहीं लगेगा। तारा परी ने ठान रखा था कि जब तक अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी के सामने भी अपने असली रूप में नहीं आना चाहती थी। करिश्मा जी ने जल्दी ही कुछ मन ही मन में पढ़ना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते करिश्मा जी का कद बढ़ने लगा था और वो एकदम से बड़े भयानक और विशाल शरीर के साथ वहाँ खड़ी हो गई थी। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी को देखा तो तारा परी मुस्कुराने लगी थी। वहीं करिश्मा जी को ये लगने लगा था कि कहीं उसके जिन रूप को देखकर तारा बेटी डर ना जाए। हालांकि वो पहले भी करिश्मा का जिन रूप देख चुकी थी, लेकिन उस वक्त अमन उसके साथ था, तो कहीं ना कहीं करिश्मा जी को यही लग रहा था कि आज तारा परी करिश्मा जी के साथ अकेली है तो कहीं उसे ऐसा न लग जाए। फिर जल्दी ही करिश्मा जी ने बड़ी सी हवा भरकर उन कीड़े मकोड़ों की ओर फूंक मारनी शुरू कर दी थी। उनकी फूंक के साथ साथ आग के शोले निकलने लगे थे और जल्दी ही एक एक करके सभी कीड़े मकोड़ों में हलचल पैदा हो गई थी।